मेरी दादी, मेरी दादी कहाँ है?
जहाँ होना चाहिए, सीसीयू में।
अरे ये तस्वीर यहाँ अस्पताल में ली गई है।
अच्छा तो मैं क्या करूँ?
किसी ने मेरी दादी को धमकाया है, उनकी तस्वीर ली है, लेकिन आप आराम से बैठी हुई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे?
मैं आराम से बैठी हूँ? मैं तो आपके पैकेट की वजह से 3-4 दिनों से पुलिस के सवालों के जवाब दे रही हूँ।
कौन सा पैकेट?
वही पैकेट जो आपकी दादी के सरहाने से मिला।
वो पैकेट कहाँ है?
केस की फाइल में लगा हुआ है।
केस?
जी, मुलाकात की टाइम के बगैर गैर कानूनी तौर पर आने के बारे में बनाए गए केस के साथ बीमार को इनडायरेक्ट धमकाने और खतरे का अलार्म बजाने का केस। और कुछ और भी बताऊं?
उस पैकेट में क्या लिखा हुआ था?
लिखा था कि कानून की खिलाफ वर्जी की सजा होती है वगैरह वगैरह। जहाँ तक मुझे याद है, हमें इसके बाद एक दूसरे से नहीं मिलना था। अगर आपको कुछ और पूछना है तो जाके इन्फॉर्मेशन से पूछिए।
मेरी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। वो आदमी
देख तो रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं।
मेहरबानो, प्लीज आप मुझे उनसे मिल लेने दीजिए।
मुलाकात के औकात में।
मुझे धमकी दी गई है, देखा नहीं खत में क्या लिखा था?
कहा ना, मुलाकात के औकात में।
वो खत कहाँ है?
सिक्योरिटी के पास।
सिक्योरिटी?
देखो, तुम खुद जानते हो कि हमारे लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर चुके हो, हॉस्पिटल में हमारी कितनी बेइज्जती करवा चुके हो, समझे? और फिर तुम, मैं ये बातें तुमसे क्यों कर रही हूँ?
मैं नहीं चाहता था कि इस तरह हो। मुझे वाकई अफसोस है, बहुत ज्यादा। आप सही कह रही हैं, मैंने आपके लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर दी। आपके वालिद के बारे में,
उनके बारे में कुछ नहीं सुनना
चाहती। सिर्फ 2 मिनट,
हत्ता 2 सेकंड।
प्लीज प्लीज।
ठीक है, पहले मुझे बीमार को देखने दें।
अम्मी जान, कैसी हैं आप? जूस तो ऐसे ही रखा हुआ है, गर्म हो जाएगा।
तुम्हारे ख्याल में इन मासूम बच्चों के साथ क्या हुआ होगा?
कौन सी बच्चियां?
उस मरहूम जवानी में गुजरने वाले की बच्चियां। मेरे खुले खुदाया, इस वक्त अजीज की कसम, गुनाह को माफ कर दे।
अम्मी जान, आप क्या कह रही हैं?
कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने वादा किया है कि कुछ नहीं बोलूंगी, खामोश रहूंगी। इस खामोशी ने, सुकूत ने मेरा ये हाल बना दिया है लड़के।
मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम, मैं कलानी हूँ।
वालेकुम अस्सलाम कलानी साहब, आप ठीक हैं?
शुक्रिया बेटा। हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ। कैसे हो? बेटे, मुझे आज रात कहीं सफर पर जाना है, सोचा पूछूं कि कब मिल सकते हो, आज ठीक रहेगा?
नहीं, आज तो नहीं, आतिफा अस्पताल में है, मुझे घर पर रहना होगा, अम्मी अकेली हैं।
बुजुर्गों ने कहा है कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अगर तुम बाहर नहीं आ सकते तो मैं अंदर आ जाता हूँ, जहमत तो नहीं होगी?
नहीं, कोई बात नहीं, जब चाहे आए।
ठीक है, तो मैं तुम्हारे पास जल्दी आ रहा हूँ।
मैं इंतजार करूंगा, खुदा हाफिज।
एक ऐसे फर्द के खातिर जिसे मैं बहुत चाहता था, उसके भाई से मेरा टकराव हुआ, उसके बाद जिंदगी में कुछ हादसा पेश आए, वो आदमी हाथ से निकल गया, मैं बेकार हो गया, मेरा अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया। तब वो मेरे पास आया।
वो कौन है?
उसका नाम जैक है, फ्रांसीसी है, किसी और के लिए काम करता है, लेकिन उसे ज्यादा मुश्किल मेरे साथ है।
अच्छा, तो अगर कोई उनका पैसा वापस ना कर सके तो उसके साथ क्या करते हैं?
उसको अपने लिए काम करने पर मजबूर कर देते हैं, गैर कानूनी काम, बात ना मानने पर हाथ तोड़ देते हैं, ईरान तक पीछा करते हैं, अस्पताल में उसकी दादी को ढूंढ लेते हैं, बाकी बातें आप जानती हैं।
और तुम्हें कैसे ढूंढ निकाला?
उसका एक ईरानी दोस्त है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस चंद बड़े होटलों में फोन करना होता है।
तो अब तुम क्या करना चाहते हो?
नहीं मालूम, बस ये सोचता हूं कि अगर वो धमकी से आगे बढ़ते तो मेहरबानों का क्या हश्र करते, तुम्हारे लिए कितना बड़ा मसला बन जाता। इसके बाद तो मैं आप और मोहम्मद से आंखें मिलाने के काबिल न रहता, समझ में नहीं आता क्या करूं। आप ही बताइए क्या करूं।
मैं, अगर मेरी मानते हो तो पुलिस को सब कुछ बता दो।
वो चालाक इंसान है, मुझे नहीं लगता कि दोबारा यहां आएगा। मुझसे इंतकाम लेने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ लेगा।
बहरहाल सिर्फ पुलिस ही तुम्हारी मदद कर सकती है।
डॉक्टर आतिफा, और आप मेरी मदद करेंगी?
क्या जबरदस्त चाय है भाई, ऐसी चाय तो कहीं मिली नहीं थी मुझे, बहुत अच्छी। तुमने खुद बनाई है ना?
जी बिल्कुल।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, खुशकिस्मत होगी वो औरत जो तुम्हारी जिंदगी के हम सफर बनेगी। अफसोस के मेरी बेटी बीमार है, वरना मैं एक मिनट भी ना लगाता सारे रसूमात को बालाए ताक रख कर तुम्हारा रिश्ता मरूं फरजाम से मांग लेता।
आपकी नवाजिश है।
ओ जल गया, फरजाम को ऐसी चाय बहुत पसंद थी, खुदा गरीक रहमत करे। अच्छा तो मोहम्मद बेटा, मैं सीधा असली बात पर आता हूँ। फरजाम चाहते थे कि सब उमूर साफ और शफाफ हों, इसीलिए काश कि उनकी बेटी यानी तुम्हारी बहन भी यहाँ होती और मैं उनके सामने तमाम बातों की वजाहत करता। अलबत्ता शुगर क्यूब लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बगैर मीठे के पी लूँगा। और ये कि बहरहाल तुम जानते हो कि मुझे सफ़र पर जाना है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हैं। जानता हूँ कि आप लोगों का आपस में ऐसा कोई मसला नहीं है, फरजा मरहूम इतने ही खुशबूदार है कि इंसान चाहता है कि पिता चला जाए। फरजाम मरहूम की जायदाद यही एक घर है, कारखाना और एक और ज़मीन जो अलग कर दी गई है, और तीन कागजात हैं तुम्हारे, तुम्हारी बहन और मोहतरमा माँ के नाम।
अब्बू ने जमीन के टुकड़े होने की बात नहीं की थी?
हाँ, बहरहाल वो चाहते थे कि जब तक जिंदा है सब कुछ मुयन हो जाए। कागजात हाल ही में बने हैं, उस खुदा के बंदे को अजल ने फुर्सत नहीं दी, खुदा गरीब रहमत करे।
कोई बात नहीं, मैं हैरान नहीं हुआ क्योंकि अब्बू की आदत थी।
इसके दस्तावेजात यहाँ पर हैं, अभी मैं आपकी खिदमत अर्ज करता हूँ। उनकी वसीयत के मुताबिक उनके बैंक अकाउंट में जितनी रकम थी या नहीं थी वो आपकी माँ के दवाई और इलाज पर लगनी चाहिए। अलबत्ता मैं नहीं समझता कि अब आखिर में पेश आने वाले हालात के पेश नज़र कोई रकम बची होगी। बाकी रहता है घर और कारखाना। घर को तीन बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी आप, आपकी माँ और बहन के दरमियान। अलबत्ता फरजाम साहब की ख्वाहिश थी कि जब तक मैडम अतिया जिंदा हैं बाकी वारिस घर को मिसमार करने या नई इमारत बनाने जैसे इकदाम न करें। अलबत्ता वो खुद जानते थे कि उनके बच्चे नहायत शरीफ हैं, लेकिन बहरहाल अतिया के साथ उनकी मोहब्बत की वजह से एक फितरी ख्वाहिश है।
जी बिल्कुल।
बचता है कारखाना, चार हिस्से आपको दिए गए हैं और दो आतिफा साहिबा को।
दो हिस्से क्यों? मेरा मतलब है कि अब्बू ने कारखाने में अम्मी का हिस्सा क्यों नहीं रखा?
हाँ देखो मोहम्मद बेटा, ये वसीयतनामा पुराना नहीं है, तुम्हारे मरहूम बाप ने तुम्हारी माँ की जिंदगी पुरसकून गुजरने के लिए तकसीम की है। अगर उनके लिए जमीन में हिस्सा दिया है तो वो भी इसलिए कि कहीं मैडम अतिया आप लोगों पर बोझ ना बने। तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान थे वो मोहम्मद, कह रहे थे कि तुमने इस कारखाने के लिए बहुत मेहनत की है। अलबत्ता आखिर में वो कारखाने को बेचना और उसका पैसा बिल्डिंग बनाने के काम में डालना चाहते थे और हाल ही में दिवालिया होने का ऐलान करना चाहते थे। ये अंगूर कितने मज़ेदार और मीठे हैं। खुलासा ये कि कारखाना बेचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कारखाने की क्या खबर है बताओ, कोई राह निकला?
हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन कुछ ना बन सका।
तो अब क्या इरादा है?
समझ में नहीं आ रहा है, असल में अब्बू की वफात ने हमें इतना परेशान कर दिया है, अभी तक कुछ नहीं कर सके।
दखल मत समझो मोहम्मद बेटा, लेकिन अगर बेचना चाहते हो तो देर मत करो, फौरन बेच दो। बेचने का इरादा है तो मेरे पास नकद ग्राहक मौजूद हैं।
आपका मतलब ईरज इशराक है?
तुम्हारा बहनोई? देखो बेटा, किसी को बताना नहीं, अगरचे वो मुझसे बहुत अकीदत का इजहार करते हैं, लेकिन मुझे कभी भी ये उस्ताद अच्छे नहीं लगे। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से ये कारखाना तुम्हारे बाप के चंगुल से निकाल ले और खुद खरीद ले, क्योंकि जान गया था कि मरहूम माली मुश्किलात में घिरे हुए हैं।
वो उसी में स्पेशलिस्ट है
उस्ताद। तो हाँ, लेकिन तुम्हारे वालिद राजी नहीं हुए। मैं मरहूम के लिए अपने उसी मौकिल से बात कर रहा था, लेकिन अजल ने मोहलत नहीं दी। बहरहाल तुम खुद सोचो, देखो क्या कर सकते हो।
लगता है कोई और चारा नहीं है, लेकिन अगर बेचना हुआ तो तरजीह दूंगा किसी ऐसे फर्द को बेचूं जिसका नाम ईरज इशराक ना हो। कम से कम इत्मीनान तो रहेगा कि कारखाना इस नापाक शख्स के हाथ नहीं लगेगा।
ठीक है, तो मैं अपने मौकिल से बात करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ।
कीमत की अहमियत नहीं है, बस चाहता हूँ कि तमाम मुलाजमीन को उनकी पूरी पूरी तनख्वाह दे दी जाए। उन बेचारों का हक पामाल नहीं करना चाहता।
मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तुम्हारे वालिद और उनके मुलाजमीन की दुआ खैर तुम्हें नाकाम नहीं होने देगी। कोई काम हो तो मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अच्छा हुआ शुगर क्यूब्स नहीं थे, ये अंगूर बहुत मीठे हैं।
माफ कीजिए डॉक्टर साहिबा, आपके पास इजाफी फैट होगा?
अभी देखती हूँ, माजरत के साथ। ये लो।
सलाम अलैकुम डॉक्टर साहिबा।
वालेकुम सलाम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
सच्ची कुछ अरसे से मेरे दिल में दर्द हो रहा है।
सच्ची? थोड़ा सब्र कर लेती, दवाएं भिजवा देती।
नहीं नहीं नहीं, हो सकता, क्योंकि मेरे दिल का दर्द बीवी की दूरी की वजह से है।
फिर अपना काम छोड़ के यहाँ आ गए? नर्सें आहिस्ता आहिस्ता मेरा मजाक उड़ाने लगी हैं।
हसद है बेगम, आपको बहुत खुश होना चाहिए।
खुश तो हूँ, लेकिन अगर सब मेरे पीछे इशारे किनाए करें और मुझ पर कहके लगाएं तो ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं होगी।
काम खत्म हो जाए तो घर चले।
माफ़ कीजिएगा इशराक साहब, मुझे अभी घर से आए हुए 1.5 घंटा भी नहीं हुआ है, अभी तो 3 बीमार भी नहीं देखे।
ओहो, अरे मैं क्या करता, ऑर्डर तैयार हो गया था, रात तक सब नहीं कर सकता था, इसलिए ले आया।
परंदहा बे तमाशाए बादहा रफ्तन, शकूफहा बे तमाशाए आबहाए सफीत, जमीन उरियन मांदे एस व बाग है गवान, वो याद मेहर तु ए मेहरबान तरस खुर्शीद।
ये क्या है शायर साहब?
शिराज की सौगात।
तुम तो वहां सिर्फ 24 घंटे रहे, सौगाती भी ले आए, तो इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा छोड़िए, ये बताइए ये शिराज की सौगात है क्या? अंगूर का पानी, लीमू का पानी
नहीं,
बाहरी नारंज का जूस,
हाँ नजदीक हो रही हो,
बिदमेश्क, नस्तरन,
नहीं 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 नहीं।
अरे तो फिर क्या है?
खोल लो। तुम्हारे क्लिनिक की दीवार खाली थी, सोचा यहाँ के लिए कोई चीज खरीद लूं, उन लम्हात के लिए जब तुम बोर हो जाती होगी, उसको देखोगी और बार बार मेरी याद आएगी। मुझे याद है कि एक दिन एक बहुत ही प्यारी डॉक्टर कह रही थी कि तेहरान मुंतकिल होने से पहले शिराज की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और जब उसे अपनी फैमिली की याद आती थी तो अपनी सहेलियों के साथ हाफिजा जाती थी, क्योंकि उसे इतनी अच्छी जगह लगती थी, उसे ख्वाबों में उसे देखती थी। तुम ऐसे क्यों देख रही हो?
بتاؤ گے نہیں اسی کام کی خاطر 24 گھنٹے کے لیے شیراز گئے؟
جانے دو، سپیرو کب آنا ہے؟
زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ سپہر کو دوستوں کے ساتھ رویا کے بچے کو دیکھنے جانا، ایرج میں نے اس کی تصویر دیکھی، بہت ہی پیاری۔
رویا؟
ہاں نا، میری کلاس فیلو، پرسوں رات بتایا تھا نا۔
میں بھی آؤں گا، تمہیں پہنچا کے وہاں کا منتظر رہوں گا نیچے، ٹھیک ہے؟
لیکن مجھے تو کولیگز کے ساتھ جانا ہے، کوئی بھی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں آ رہی، اور دروازے پہ کیوں میرا انتظار کروں گے وہاں پر؟
اچھا تو کسی اور دن چلی جاؤ۔
لیکن ہم نے پہلے سے ساتھیوں سے طے کر لیا ہے۔
اچھا تو کل چلی جانا۔
ہم دونوں جانتے ہیں کہ کل بھی یہی کہو گے، صرف آدھے گھنٹے کے لیے ہی تو۔
10 منٹ میں نہیں ہو سکتا۔
10 منٹ؟ میری ایک بہت قریبی سہیلی کا بچہ ہوا ہے، اور تم ہر ایک منٹ کے بعد بھی مجھے فون مت کرتے رہنا، نہیں ایرج۔
15 منٹ
پلیز ایرج۔
جاؤ ہی نہیں۔
ٹھیک ہے، نہیں جاتی۔ دوبارہ رویا سے جھوٹ بولنا پڑے گا، ورنہ بہت سخت ناراض ہو جائے گی۔
تو پھر میں 5 بجے دروازے پر منتظر رہوں گا، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ہیلو،
السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، اشراق بول رہا ہوں۔
آپ کے فون کی منتظر تھی۔
میرے خوش نصیبی ہے کہ آپ میرے منتظر ہیں۔ خیر تو ہے میڈم؟
کیا ہوا ہے کہ فون نمبر چینج کر لیے؟
کیا کروں، کوئی چارہ نہیں ہے، آپ کی شاگردی کر رہا ہوں۔ جب آپ میرا فون نہیں اٹھاتی تو میں بھی مجبور ہو کر کے آپ کے ڈگر پر چلنا شروع کر دیا۔ میں نے
نیت اہم نہیں ہے، اہم عمل ہے۔
اتفاق سے میں نے بھی اسی لیے فون کیا، عمل کے لیے۔
بھونڈا مذاق تھا۔
اتفاق سے اس بار سنجیدہ ہوں، اجازت ہے؟
فرمائیے۔
پوچھنا چاہتا ہوں کہ کب تک؟
میں نہیں سمجھی
یہ نفرت اور کینہ کب تک؟ کیا اتنا عرصہ گنہگار کو سزا دینے کے لیے کافی نہیں تھا؟
تم کیا کہہ رہے ہو؟
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے والد کی وصیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو بھول جائیں۔ سمجھے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا اور اس کی سزا بھی بھگت رہا ہوں، تمہارے خیال میں یہ کافی نہیں ہے؟
تم سمجھتے ہو کہ میں اب تک تمہیں سزا دے رہی تھی؟ سمجھتے ہو میں نے تم سے جدا ہونے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ تمہیں سبق ملے اور دوبارہ میرے پیچھے آؤ؟ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے ایرج اشراق؟ تمہارے خیال میں کون ہوں، ایک ایسی عورت جو شادی اور طلاق کے لیے منصوبے بناتی ہے؟
میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر
بہت افسوس ہے، تم نے اتنے سالوں میں مجھے بالکل نہیں پہچانا۔
تم غلط سمجھ رہی ہو عاطفہ۔
نہیں، اتفاق سے اب غلط نہیں سمجھ رہی۔
کیوں نہیں غلط سمجھ رہی ہو، ہم نے ایک ساتھ کافی دن گزارے ہیں۔
ایسے دن جن کو ہر دفعہ خراب تر کر دیتے ہو۔
میری اور تمہاری زندگی کی داستان ایک قصہ نہیں ہے، میں تمہاری زندگی میں دخل نہیں دینا چاہتا۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی نیا فرد ہے تو یاد رکھنا، وہ کبھی بھی ہماری آپس کی یادوں کو نہیں مٹا سکتا، کبھی بھی۔
کیا نیا فرد؟ بکواس، لگتا ہے بھول گئی ہو کہ میں اب تمہاری بیوی نہیں۔ دیکھ رہے ہو، ابھی تک بدزن انسان و اشراق، اب بھی کچھ نہیں بدلا ہے۔ میں اور تم اب بھی وہی پرانے انسان ہیں، وہی فاصلے ہیں، وہی فرق، وہی ہمیشہ کے جھگڑے۔
میں تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کرنا چاہتا عاطفہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔
خدا حافظ۔
السلام علیکم یوسف بھائی۔
اخا فرجام صاحب، نظر نہیں آ رہے جناب، فون کیا تھا، موبائل آف تھا،
شاید چارج ختم ہو گیا ہو، پتہ نہیں۔
تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، کارخانے کب آؤ گے؟
آنا چاہتا تھا لیکن آج عاطفہ کا اسپتال جانا ضروری تھا، گھر پر رکا ہوں۔ और हाँ, मैंने कारखाने की बात कर ली है।
कौन सी बात?
वही दिवालिया होने और बेचने का ऐलान। मैंने सोच लिया यूसुफ, मेरे ख्याल में हमें
जल्दी मत करो भाई, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कारखाने आओ, जरा बैठकर बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, पता चलेगा।
तुम कितने लापरवाह हो गए यूसुफ। अरे तुम ही तो कह रहे थे कि हमें दिवालिया होने का ऐलान कर देना चाहिए।
शाबाश, मुझे नहीं पता था कि मेरी बात तुम्हारे लिए इतनी अहम होगी। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम करने में बेहतरी नहीं है।
मेरे साथ मजाक मत करो यूसुफ, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, इतना परेशान
हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि उठ के आओ, एक कप चाय पीते हैं, तुम्हें परेशानी से निकालना है। तुम उठ के आओ, मैं ठीक कर लूंगा।
कोई मोजेजा ही मुझे परेशानी से निकाल सकता है।
तुम चाहो तो इसका नाम मोजेजा रख लो, लेकिन ये बात हो चुकी है।
क्या कह रहे हो, कौन सी बात हो चुकी है?
मोजेजे की बात कर रहा हूँ।
क्या?
अरे तुम मोजेजे के ही मुंतजिर थे ना। लोन मोहम्मद साहब, लोन का इंतजाम हो गया।
कसम से सच कह रहे हो?
झूठ क्यों बोलूंगा सरकार। हेलो मोहम्मद, जिंदा हो? कहाँ गए?
यहीं पर हूँ। यकीन नहीं आ रहा यूसुफ, तुम तो कह रहे थे कि आखिरी तीर भी निशाने पर नहीं लगा।
मैं कौन होता हूँ ऐसा कहने वाला। देखो वो जात जब चाहती है तो काम को ऐसा संवारती है कि इंसान दंग रह जाता है।
अच्छा बताओ, बताओ कब लेने चले, कितना टाइम लगेगा, कितना लोन दे सकते हैं वो लोग, कैसी जमानत मांगे?
इन बातों को छोड़ो, चेक इस वक्त मेरी जेब में है भाई।
ले भी लिया? अब तक मुझे बताया भी नहीं शैतान, कितना है?
पहली बात तो ये कि घबराओ मत, दूसरी ये कि पागल खुद हो, और तीसरी ये कि इतना कुछ है कि अरसे तक सुकून का सांस ले सकेंगे।
तो
बाकी बातें चाय के वक्त करेंगे भाई, ठीक है ना?
तुम बहुत अच्छे हो यूसुफ।
माफ करना, आवाज कट रही है। खुदा हाफिज।
जोकर।
आपस की बात है, क्या ठाट बाट है उस्ताद के।
तुम इसे ठाट बाट कहते हो? बैठो, खाना तो नहीं खाया?
क्या बात कर रहे हो, अरे रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद थोड़ी जाया जाता है।
अच्छा क्या खाना है, पसंद कर लो।
मैं कुर्बान जाऊं, इन खानों के तो मैं नाम तक नहीं पढ़ सकता, तो समझ में क्या आएगा, खुद ही कुछ इंतखाब कर लो। हाँ देखो, लेकिन केकड़े और कीड़े मकोड़े नहीं हो।
बेफिक्र रहो, हमारे केकड़े इस मंगली के रास्ते बाहर आते हैं, ऐसा खिलाऊंगा कि तुम हमारे हमेशा ग्राहक बन जाओगे।
जर्रा नवाजी।
लेकिन सिर्फ इसी दफा मेरे मेहमान होगे? बताओ, मैं सुन रहा हूँ।
मामला ठीक हो रहे हैं, मोहम्मद को बेचने पर तैयार कर लिया है।
वो घमंडी आदमी और बेचना, वो भी मुझे
बेचना चाहता है, लेकिन तुम्हें नहीं।
क्या मतलब?
ये कारखाना तुम्हारे हाथ ना लगे इसलिए मेरे मुवक्किल को बेच रहा है जो तुम हो।
अरे तुम तो शैतान के बाप निकले, खराब ना कर देना।
बिल्कुल नहीं, नहीं, अलबत्ता अगर आप चाहें और मुझ पर भरोसा है और इस काबिल समझते हैं कि मुझे अपना वकील बनाएं।
तुमने कोई और रास्ता छोड़ा है क्या? फीस तो बहुत ज्यादा नहीं है।
वादा करता हूँ कि जनाब अली के रेस्टोरेंट के खानों से कमी होगी। माफ कीजिएगा, आपके रेस्टोरेंट में इस तरह की हरकतें बेअदबी के जुमरे में आती हैं, लेकिन क्या करें। और उस्ताद, मीठे में क्या है?
दूसरा कह रहे हो, तुम्हारे लिए ब्लोमिर के साथ कारामल क्रीम मंगवाइए।
वो तो अपनी जगह महफूज है, मेरा मतलब है मेरी अमानत।
अच्छा, तो अमानत भी मांग रहे हो? जरूर जल्दी में भी होगी। कपड़े के नीचे
माफ कीजिएगा, फिर बेअदबी हो गई।
बहुत खुश मत हो किलानी, अभी तुम्हें एक दो काम और करने हैं। ये उनके एडवांस किस्त है, खाना खाओ फिर चलते हैं, गलतनामे का काम निपटाते हैं।
मुझे अफसोस है, हम उनके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। हमने पूरी कोशिश की लेकिन बेसुध। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि उनको तकलीफ़ नहीं हुई, बहुत आराम था। तुम्हारा निकनेम टीना है? नर्स कह रही थी कि मरते वक्त तुम्हारा नाम ले रहा था, इसी नाम को दोहरा रहा था।